एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दशकों से रिश्तों की दुनिया में क्या कहते हैं चर्चा का विषय रही है।
हाँ, जॉन ग्रे की मेन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस।
बिल्कुल, एक ऐसा टाइटल जिसे शायद हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा।
हाँ, ये उन किताबों में से है जिनका जिक्र बहुत होता है।
और देखिए, भले ये कुछ समय पहले लिखी गई थी, पर इसमें जो बातें हैं, मतलब स्त्री पुरुष के बीच संवाद की मुश्किलें,
हाँ, वो अलग अलग जरूरतें
और उनसे पैदा होने वाली गलतफहमियां, मुझे लगता है आज भी बहुत से लोग अपने रिश्तों में ये महसूस करते होंगे।
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये बातें वक्त के साथ कुछ खास बदली नहीं है, है ना?
सही कहा।
तो ये किताब इन्हीं अंतरों को समझने के लिए एक तरह से एक नजरिया देती है। ये दावा करती है कि स्त्री पुरुष की सोच, उनकी भावनाएं, उनके व्यवहार करने के तरीके, वो अक्सर अलग होते हैं।
और ये कोई कमी नहीं है?
नहीं, ये कमी नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविक प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। ऐसा मानिए कि ये दो अलग संस्कृतियों या भाषाओं के बीच अनुवाद करने वाली गाइड जैसी है।
दिलचस्प। तो ये विचार आए कहाँ से? चलिए पहले लेखक जॉन ग्रे को थोड़ा जानते हैं। उनमें ऐसा क्या खास था कि ये किताब इतनी पॉपुलर हो गई?
जॉन ग्रे वो एक अमेरिकी लेखक हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पर जाने जाते हैं।
हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में।
उन्होंने मनोविज्ञान और मानव यौनिकता में अकादमिक पढ़ाई भी की है। हालांकि ये भी सच है कि जिस यूनिवर्सिटी से उनकी पीएचडी है वो अब कार्यरत नहीं है, पर उनकी असली पहचान शायद सिर्फ डिग्री से नहीं है।
सही बात है, मतलब उनकी जो विशेषज्ञता है उसका बड़ा हिस्सा तो उनके सालों के प्रैक्टिकल काम से आता है ना?
बिल्कुल, उन्होंने हजारों कपल्स के साथ काउंसलिंग सेशंस किए हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स किए हैं, तो उनके विचार सिर्फ किताबी नहीं है।
हाँ, वो असल जिंदगी के अनुभवों और पैटर्न पर आधारित लगते हैं।
हाँ, और ये एक दिलचस्प मिश्रण भी है। उनके काम में आपको मनोवैज्ञानिक रिसर्च मिलेगी, थेरेपी का अनुभव मिलेगा, उनके अपने निजी जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखते हैं,
जैसे उनका तलाक और फिर एक कामयाब दूसरी शादी।
हाँ, और यहाँ तक कि पूर्वी दर्शन का भी प्रभाव है। उन्होंने महर्षि महेश योगी के साथ भी काफी, मतलब करीब 9 साल बिताए थे।
अच्छा, तो ये सब मिलाकर एक अनोखा नजरिया बना होगा।
और शायद उनकी सबसे बड़ी काबिलियत यही रही कि उन्होंने इन सब जटिल बातों को एक बहुत ही सरल और क्या कहते हैं यादगार रूपक में ढाल दिया।
वो मार्स और वीनस वाला?
हाँ बिल्कुल, ये कोई अकादमिक थ्योरी से ज्यादा उनके देखे हुए पैटर्न को समझाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन गया।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर। ये किताब आखिर है क्या?
देखिए, ये मुख्य रूप से विषम लैंगिक, मतलब हेट्रोसेक्सुअल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए लिखी गई एक गाइड है। इसका फोकस है स्त्री पुरुष के बीच के उन मूलभूत अंतरों को उजागर करना।
वो अंतर जो अक्सर तनाव या दूरी का कारण बन जाते हैं।
सही कहा, और इसका जो केंद्रीय रूपक है वो बड़ा मजेदार है।
हाँ, कि पुरुष और महिलाएं इतने अलग हैं मानो वे दो अलग ग्रहों से आए हों, मंगल और शुक्र।
बिल्कुल, जहां मंगल ग्रह वाले यानी पुरुष, वो अक्सर योग्यता, क्षमता, समस्याओं को हल करने, मतलब नतीजों पर ध्यान देते हैं।
और तनाव में?
तनाव होने पर वे अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे ग्रे ने गुफा में जाना कहा है।
अच्छा, गुफा।
वहीं शुक्र ग्रह वाली यानी महिलाएं, वो प्यार, संवाद, रिश्ते और भावनाओं को ज्यादा तवज्जो देती हैं।
और वो तनाव में क्या करती हैं?
वो तनाव में बात करके, अपनी भावनाएं बांटकर कनेक्शन और सहानुभूति ढूंढती हैं।
तो जब ये दो अलग ग्रहों के लोग मिलते हैं तो गलतफहमियां तो होंगी ही।
हाँ, और अगर वे एक दूसरे की भाषा और जरूरतें ना समझें तो लाजमी है।
हाँ, और किताब का मकसद सिर्फ इन अंतरों को गिनाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इन्हें कैसे समझा जाए
और इनके साथ बेहतर तरीके से कैसे रहा जाए।
हाँ, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, प्रैक्टिकल सुझाव भी देती है।
कोशिश ये है कि हम साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें, मतलब निराशा की जगह सहानुभूति ले लें
और इल्जाम लगाने की जगह समझदारी।
बिल्कुल, ये कोई भारी भरकम विज्ञानी शोध पत्र नहीं है, बल्कि एक यूजर फ्रेंडली गाइड की तरह है। रोजमर्रा की रिलेशनशिप की दिक्कतों को सुलझाने में मदद करने का दावा करती है।
एक तरह का ट्रांसलेशन मैनुअल है ये।
हाँ, कह सकते हैं।
चलिए अब किताब के कुछ सबसे चर्चित विचारों और कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला तो यही मूल रूपक है, पुरुष मंगल से, महिलाएं शुक्र से।
हाँ, ये किताब की शुरुआत में ही आता है। कहानी कुछ यूं है कि वे अपने अपने ग्रहों पर खुश थे, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ और वे पृथ्वी पर आ गए।
लेकिन यहाँ आकर वे ये भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से हैं।
हाँ, भूल गए कि उनकी जरूरतें, उनकी भाषाएं, उनके सोचने के तरीके अलग हैं। और इसी भूलने की वजह से रिश्तों में टकराव शुरू हो गया।
तो यहाँ मुख्य सीख ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर का व्यवहार गलत न हो, बस अलग हो।
बिल्कुल, उनके अपने ग्रह का तरीका। ये नजरिया अपनाने से ही शायद थोड़ी सहानुभूति और समझ की गुंजाइश बनती है।
वरना हम अक्सर यही सोचते रह जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या इन्हें समझना चाहिए।
सही बात है। इसी समझ को आगे बढ़ाता एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, मिस्टर फिक्स इट बनाम होम इम्प्रूवमेंट कमेटी।
हाँ, ये तो बहुत आम पैटर्न लगता है।
हाँ, पुरुष अक्सर सोचते हैं कि प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है समस्याओं का हल निकालना। जब उनकी पार्टनर कोई परेशानी बताती है
तो वे फौरन मिस्टर फिक्स इट मोड में आ जाते हैं।
बिल्कुल, और समाधान सुझाने लगते हैं।
जबकि कई बार महिला सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती है। वो चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, सहानुभूति मिले।
उसे शायद तुरंत समाधान नहीं चाहिए होता।
हाँ, और जब पुरुष सीधे समाधान पर कूदता है तो महिला को महसूस हो सकता है कि उसकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया गया, एक डिस्कनेक्ट सा आ जाता है।
और दूसरी तरफ महिलाएं वो रिश्तों को बेहतर बनाने और देखभाल करने में स्वाभाविक रुचि रखती हैं, तो ये कभी कभी होम इम्प्रूवमेंट कमिटी की तरह सलाह दे सकती हैं।
अनचाही सलाह भी।
हाँ, कि पुरुष खुद को या किसी स्थिति को कैसे सुधार सकता है। उनका इरादा नेक हो सकता है मदद करने का,
लेकिन पुरुष अक्सर इसे अपनी काबिलियत पर सवाल या आलोचना की तरह ले सकता है ना?
बिल्कुल, उसे लग सकता है कि उसे नाकाबिल समझा जा रहा है।
तो यहाँ सुझाव ये है कि पुरुष सिर्फ समाधान देने के बजाय सुनने पर ध्यान दे, भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
हाँ, और महिलाएं सीधे सलाह देने के बजाय पहले पूछ सकती हैं या अपनी जरूरत को नरमी से बता सकती हैं।
ठीक है।
फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तनाव से निपटने का तरीका। पुरुष गुफाओं में जाते हैं और महिलाएं बात करती हैं।
हाँ, ये बताता है कि स्ट्रेस में दोनों के रिस्पॉन्स कितने अलग हो सकते हैं।
जब पुरुष तनाव में होता है तो वो अक्सर चुप हो जाता है, अकेला रहना चाहता है,
अपनी गुफा में चला जाता है।
हाँ, वो समस्या पर अकेले में सोचना चाहता है जब तक उसे कोई हल ना मिल जाए या वो शांत ना हो जाए।
और इस दौरान उससे बात करने की कोशिश करना
उसे और परेशान कर सकता है।
लेकिन महिला साथी इसे अक्सर व्यक्तिगत तौर पर ले लेती है। उसे लगता है कि पुरुष उसे नजरअंदाज कर रहा है या उससे प्यार नहीं करता।
जबकि पुरुष के लिए ये सिर्फ तनाव से डील करने का एक तरीका है।
और महिला जब वो तनाव में होती है
उससे अक्सर किसी करीबी से अपनी भावनाओं, अपनी परेशानियों के बारे में विस्तार से बात करने की जरूरत महसूस होती है। ये उसके लिए तनाव कम करने और जुड़ाव महसूस करने का तरीका है।
और अगर पुरुष उसे चुप कराने की कोशिश करे या उसकी बातों को छोटा करके देखे तो महिला को और अकेलापन महसूस हो सकता है। तो यहाँ फिर वही बात आती है, एक दूसरे के तरीकों का सम्मान करना
और उन्हें व्यक्तिगत हमले की तरह ना लेना, समझना कि ये सिर्फ अलग अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टाइल है।
बिल्कुल, संवाद से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, अलग अलग भाषाएं बोलना।
अच्छा, वो कैसे?
ये बताता है कि पुरुष और महिलाएं शब्दों का इस्तेमाल भी अलग अलग मकसदों के लिए कर सकते हैं। जैसे पुरुष भाषा का इस्तेमाल अक्सर जानकारी देने या तथ्य बताने के लिए करते हैं,
वो शब्दों का सीधा शाब्दिक अर्थ लेते हैं।
हाँ, जबकि महिलाएं कई बार भाषा का इस्तेमाल अपनी भावनाओं की गहराई या तीव्रता बताने के लिए करती हैं। वे शायद अतिशोक्ति मतलब हाइपरबली या रूपक मेटाफोर्स का इस्तेमाल करें, जैसे तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते।
हाँ।
या मुझे लगता है मैं सब कुछ अकेले ही करती हूँ।
हाँ।
उनका मतलब शायद शाब्दिक न हो
बल्कि वो उस पल की भावना दर्शा रहा हो, मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सुना नहीं जा रहा या मैं बहुत बोझ महसूस कर रही हूँ।
बिल्कुल, और पुरुष इसे सुनकर डिफेंसिव हो सकता है क्योंकि उसे पता है कि कभी नहीं या सब कुछ तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
वो फैक्ट्स पर अटक जाता है और महिला के शब्दों के पीछे छिपी भावना को नहीं पकड़ पाता।
सही।
यहाँ सलाह यह है कि शब्दों के पीछे की भावना को सुनने की कोशिश की जाए।
रिश्तों में नजदीकी और दूरी के पैटर्न को समझने के लिए ग्रे ने रबड़ बैंड और लहर के रूपक दिए हैं।
ये भी काफी सुने हैं मैंने।
हाँ, काफी चर्चित हुए। रबड़ बैंड थ्योरी पुरुषों के लिए है। ये कहती है कि पुरुष अंतरंगता और स्वतंत्रता के बीच झूलते हैं।
मतलब बहुत ज्यादा करीब आने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से थोड़ी दूरी बनाने की, अपनी आजादी महसूस करने की जरूरत होती है। जैसे रबर बैंड खिंचता है, ये पार्टनर को रिजेक्ट करना नहीं है।
अच्छा।
और जब वे इस दूरी की सीमा तक पहुंचते हैं तो वे फिर से उतनी ही या उससे ज्यादा ताकत से वापस करीब आने की इच्छा महसूस करते हैं, जैसे रबर बैंड वापस आता है।
तो अगर महिला पार्टनर इसे समझती है तो वो उसके दूर जाने पर घबराएगी नहीं।
हाँ, या उसका पीछा नहीं करेगी बल्कि उसे स्पेस देगी ये जानते हुए कि वो वापस आएगा।
और महिलाओं के लिए लहर का रूपक है।
हाँ, उनके भावनात्मक संसार के लिए, उनका आत्मसम्मान, प्यार देने और महसूस करने की क्षमता और मूड एक लहर की तरह स्वाभाविक रूप से ऊपर नीचे होता रहता है।
तो जब लहर ऊंची होती है
तब वे बहुत प्यार और सकारात्मकता महसूस करती हैं, लेकिन जब लहर नीचे जाती है तो वे ज्यादा संवेदनशील, असुरक्षित या खाली महसूस कर सकती हैं।
और इस समय उन्हें क्या चाहिए?
इस समय उन्हें डांट फटकार या समाधान की नहीं बल्कि सबसे ज्यादा समझ, सहानुभूति और अटूट समर्थन की जरूरत होती है। पुरुष साथी अक्सर इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं
जो काम नहीं करता।
हाँ, जरूरी है कि वे बस साथ रहें और सपोर्ट दें।
और एक आखिरी कॉन्सेप्ट जिस पर बात करनी चाहिए वो है पॉइंट सिस्टम।
हाँ, यानी प्यार और कोशिशों को कैसे अलग अलग तरह से गिना या महसूस किया जाता है। किताब के अनुसार महिलाओं के लिए प्यार का हर इजहार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मायने रखता है
और लगभग बराबर वजन रखता है, जैसे एक पॉइंट।
हाँ, कुछ ऐसा ही। एक फूल देना, घर के काम में मदद करना, ध्यान से सुनना, ये सब उनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं।
जबकि पुरुष अक्सर सोचते हैं कि बड़े काम या महंगे तोहफे ज्यादा पॉइंट्स दिलाते हैं।
बिल्कुल, वे शायद एक बड़ा काम करके सोचें कि उन्होंने बहुत क्रेडिट कमा लिया और फिर लंबे समय तक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना दें।
और यही महिला को महसूस हो सकता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है
या प्यार कम हो गया है। इसलिए पुरुषों को ये समझने की सलाह दी जाती है कि लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे प्यार और ध्यान के काम भी उतनी ही जरूरी हैं जितने बड़े इशारे।
ये प्यार की अर्थव्यवस्था को समझने जैसा है।
हाँ, कह सकते हैं।
तो ये कुछ मुख्य विचार थे। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो कुछ खास विषय या संदेश उभरते हैं जो इस किताब का सार है।
हाँ, पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है, स्त्री पुरुष के बीच अंतर होते हैं, उन्हें स्वीकार करें,
उन्हें बदलने की कोशिश ना करें बल्कि समझने की कोशिश करें।
हाँ, दोष देने के बजाय जिज्ञासा रखें।
दूसरा महत्वपूर्ण थीम है प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाम सहानुभूति की जरूरत का अंतर।
हाँ, पुरुष समाधान देकर प्यार जताते हैं जबकि महिलाएं अक्सर चाहती हैं कि उन्हें बस सुना और समझा जाए।
पुरुषों के लिए सिर्फ सुनना सीखना प्यार जताने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है।
बिल्कुल। तीसरा, तनाव से निपटने के अलग अलग तरीके, गुफा में जाना बनाम बात करना, ये दोनों ही अपने अपने तरीके से ठीक हैं।
एक दूसरे के स्पेस और जरूरत का सम्मान करना जरूरी है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये गुफा वाली बात काफी दिखती है ना?
हाँ, समाज में पुरुषों से अक्सर उम्मीद की जाती है कि वे अपनी भावनाएं ज्यादा ना दिखाएं, मजबूत बने
और अचले ही समस्याओं से निपटे।
हाँ, ये बात काफी हद तक सही लगती है और वही महिलाओं से भावनात्मक देखभाल और बातें साझा करने की उम्मीद ज्यादा होती है।
तो ये सामाजिक दबाव इन नैसर्गिक प्रवृत्तियों को और गहरा कर सकते हैं।
बिल्कुल, जिससे इन अंतरों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। चौथा थीम है रिश्तों में नजदीकी और भावनाओं का उतार चढ़ाव, रबर बैंड और लहर।
रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
सही।
इन साइकिल्स को समझना और इनमें एक दूसरे का साथ देना रिश्ते को मजबूत बनाता है।
और पांचवा, प्यार जताने के अलग अलग तरीके और उनका महत्व, वो पॉइंट सिस्टम।
हाँ, कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्यार के इजहार अक्सर ज्यादा मायने रखते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बड़े इशारों के साथ साथ इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं और याद रह जाती है।
हाँ, कुछ मुख्य विचारों को फिर से देखते हैं। एक बहुत शक्तिशाली विचार है सुनने को लेकर।
वो कौन सा?
जब पुरुष बिना नाराज हुए महिला की भावनाओं को सुन सकता है तो ये एक अद्भुत उपहार है। इससे महिला को सुरक्षित महसूस होता है
और इसके बदले में वो पुरुष को वो विश्वास और स्वीकृति दे पाती है जिसकी उसे जरूरत है। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ सुनना कितना कीमती हो सकता है।
बिल्कुल। और तनाव वाली बात भी, तनाव में पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं, महिलाएं बात करना चाहती हैं। कोई भी गलत नहीं, बस अलग हैं।
ये बिना जजमेंट के अंतर स्वीकार करने पर जोर देता है।
हाँ, एक और अहम नुक्ता मोटिवेशन को लेकर है।
पुरुष तब प्रेरित होते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी जरूरत है,
जबकि महिलाएं तब प्रेरित होती हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें संजोया जा रहा है।
ये बताता है कि दोनों को क्या चीजें प्रेरित करती हैं।
और वो पॉइंट सिस्टम वाला विचार भी दोहराने लायक है। एक महिला के लिए प्यार के सभी उपहार बराबर होते हैं। पुरुषों को समझना होगा कि छोटी चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बड़ी चीजें।
ये रोजमर्रा के छोटे प्रयासों के महत्व को उजागर करता है।
हाँ, ये सब बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने साथी की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनसे अपने जैसा होने की उम्मीद करनी चाहिए।
तो इन सब बातों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें असलियत में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
हाँ, कुछ सुझाव हो सकते हैं। पुरुषों के लिए, कोशिश करें कि सिर्फ समाधान देने के बजाय ध्यान से सुने और भावनाओं को समझें, मतलब वैलिडेट करें।
पार्टनर की लहर को पहचाने और जब वो नीचे हो तो उसे ठीक करने के बजाय सपोर्ट दें।
सही, लगातार छोटे छोटे प्यार और ध्यान के काम करते रहें। और अगर आपको अकेले समय, मतलब गुफा टाइम चाहिए, तो शांति से बताएं कि ये उसके बारे में नहीं, आपकी अपनी जरूरत है।
और महिलाओं के लिए,
जब पार्टनर गुफा में जाए तो उसे थोड़ा स्पेस दें, उसका पीछा ना करें या सवाल ना दागें।
अगर मदद चाहिए तो सीधे और विनम्रता से मांगें, इशारों या शिकायतों के बजाय।
हाँ, उसके समाधान देने की कोशिशों की सराहना करें, भले ही आपको सिर्फ सुनने वाला चाहिए था। और रबर बैंड थ्योरी को याद रखें, जब वो थोड़ी दूरी बनाए तो घबराए नहीं,
उस समय को अपने लिए इस्तेमाल करें।
बिल्कुल, शायद एक छोटा सा उदाहरण सोचें। मान लीजिए पत्नी अपने दिन के स्ट्रेस के बारे में बता रही है
और पति फौरन ये बताने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए था।
हाँ, यहाँ वो मिस्टर फिक्सिट बन रहा है। अगर वो सिर्फ ध्यान से सुने और कहे, सुनकर बुरा लगा, तुम्हारा दिन काफी मुश्किल रहा होगा,
तो शायद पत्नी को बेहतर महसूस हो।
हाँ, ये एक छोटा सा बदलाव बड़ा फर्क ला सकता है। ये सक्रिय सुनना और भावनाओं को मान्यता देना है।
बिल्कुल, तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो झगड़े का कारण बने। ये तो बस एक सच्चाई है जिसे हमें सहानुभूति और समझ के साथ संभालना है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम जजमेंट करने के बजाय
उत्सुक हो जाते हैं।
हाँ, उत्सुक, क्यूरियस हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों महसूस कर रहा है या कर रही है।
और मुझे ये रूपक, गुफा, लहर, रबर बैंड, पॉइंट सिस्टम, ये वाकई बहुत प्रभावी लगे। ये जटिल मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझने में आसान बनाते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
और ये विचार कि हमारा लक्ष्य पार्टनर को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भाषा का कुशल अनुवादक बनना है, ये काफी शक्तिशाली लगा मुझे।
हाँ, इस किताब का योगदान शायद यही है कि इसने लाखों लोगों को स्त्री पुरुष के बीच की गतिशीलता को समझने के लिए एक आम भाषा और कुछ प्रैक्टिकल तरीके दिए।
ये बताती है कि अंतरों को समझकर और स्वीकार करके ज्यादा गहरे और मजबूत रिश्ते बनाना मुमकिन है।
बिल्कुल, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, कि आज के दौर में जहां जेंडर रोल्स बदल रहे हैं, ज्यादा लचीले हो रहे हैं, क्या मार्स और वीनस की ये विचार आप भी उतने ही प्रासंगिक हैं?
या हमें इन अंतरों को किसी नए नजरिए से देखने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।